ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो हम हैं अध्याय नंबर 7 श्लोक संख्या 6 चैप्टर 7 वर्स नंबर 6। एतद्योनीनि भूतानि सर्वानित्युपराधरय अहम् क्रिस्तस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा प्रभवः प्रलयस्तथा। एतद्योनीनि भूतानि सर्वानित्युपराधरय अहम् क्रिस्तस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। एतद्योनीनि भूतानि सर्वानित्युपराधारय अहम् क्रिस्तस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। तो बोलना चाहे कोई नहीं। शब्दार्थ एतत्, ये दोनों शक्तियां योनिनी, जिनके जन्म के स्रोत योनिया, भूतानी प्रत्येक सृष्ट पदार्थ, सर्वाणी सारे, इति इस प्रकार, उपधारया जानो, अहम मैं क्रिस्तस्य संपूर्ण जगतः जगत का प्रभवः उत्पत्ति का कारण, प्रलयः प्रलय का कारण, तथा और। इसका अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझी में, मुझी जानो। तात्पर्य, जितनी वस्तुएं विद्यमान है वह पदार्थ तथा आत्मा के प्रतिफल है। आत्मा सृष्टि का मूल क्षेत्र है और पदार्थ आत्मा द्वारा उत्पन्न किया जाता है। पदार्थ आत्मा द्वारा उत्पन्न किया जाता है। भौतिक विकास की किसी भी अवस्था में आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती, अपितु यह भौतिक जगत आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर ही प्रकट होता है। समझ में आ रहा है क्या क्या बोल रहे, क्या चल रहा है? थोड़ा अजीब सा लग रहा है ना, पर ठीक है, इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। इस भौतिक शरीर का इसलिए विकास हुआ क्योंकि इसके भीतर आत्मा उपस्थित है। एक बालक धीरे धीरे बढ़कर कुमार तथा अंत में युवा बन जाता है क्योंकि उसके भीतर आत्मा उपस्थित है। इसी प्रकार इस विराट ब्रह्मांड की समग्र सृष्टि का विकास परमात्मा विष्णु की उपस्थिति के कारण होता है। अतः आत्मा तथा पदार्थ मूलतः भगवान की दो शक्तियां हैं जिनके वियोग से विराट ब्रह्मांड प्रकट होता है। अतः भगवान की सभी वस्तुओं के आदि कारण ही सभी वस्तुओं के आदि कारण है। भगवान का अंश रूप जीवात्मा भले ही किसी गगनचुंबी प्रासाद या किसी महान कारखाने या किसी महान महानगर का निर्माता हो सकता है, किंतु वह विराट ब्रह्मांड का कारण नहीं हो सकता। इस विराट ब्रह्मांड के सृष्टा भी विराट आत्मा या परमात्मा है और परमेश्वर कृष्ण विराट तथा लघु दोनों ही आत्माओं के कारण है। अतः वह समस्त कारणों के कारण है। इसकी पुष्टि कठोपनिषद के दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में हुई है। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम। तो ये सातवां अध्याय चल रहा है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि सातवें अध्याय से भगवान की ना भक्ति के बारे में डिस्कशन शुरू होता है। जैसे कि हमने एक बार बहुत पहले भी एक बार हमने डिस्कस किया था, भगवद गीता के 18 अध्याय हैं, पहले 6 अध्याय कर्म योग, आखिरी के 6 अध्याय ज्ञान योग या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, और बीच के जो 7 अध्याय, बीच के जो 6 अध्याय हैं, जो सातवें अध्याय से शुरू होता है, सातवें अध्याय से 12वें अध्याय तक यहां भक्ति योग की चर्चा हो रही है। तो हमने ये भी डिस्कस किया था एक बार कि जिस प्रकार से राजा जो है पूरी सेना के एकदम आगे भी नहीं चलता और सेना के सबसे पीछे भी नहीं चलता, वो सेना के एकदम बीचों बीच चलता है। जैसे सैंडविच होता है, सैंडविच में बटर कहां लगाया जाता है? ऊपर की सबसे नीचे, अगर दो अगर टोस्ट हो तो बीच में, और उसी से फ्लेवर आता है ना, चाहे जैम हो चाहे बटर हो, उसी से टोस्ट का फ्लेवर आता है। तो उसी प्रकार से जो सारे योगों में सबसे सर्वश्रेष्ठ योग है भक्ति योग, अब उसकी चर्चा शुरू होगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे वर्ष चल रहे हैं ये। तो शुरुआत किससे हो रही है? भगवान की शक्तियों के वर्णन से। तो यहां पर भगवान बोल रहे हैं, जो भी यहां पर आध्यात्मिक शक्ति है, भौतिक शक्ति है, उसका स्रोत मैं हूं, भगवान यहां बता रहे हैं। तो कोई कह सकता है, लेकिन इसका मतलब ये संभव कैसे हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल कि हर चीज का स्रोत जो है भगवान हो? ऐसा पॉसिबल है क्या ना कि सबसे बड़े भगवान ही है? कई बार लोग बोलते हैं कि भगवान में ना बड़ी ईगो है। कितनी ईगो है भगवान के अंदर, कहते हैं मेरी पूजा करो, मेरी पूजा करो, मेरी भक्ति करो, मुझे नमस्कार करो, मुझे प्रणाम करो। कितनी ईगो है भगवान के अंदर, छह ऐसे भगवान की पूजा कभी नहीं करूंगा मैं। असल में ये ईगो है, जब हम भगवान के शरण में नहीं जाना चाहते ना, इस एटीट्यूड को ईगो कहते हैं। भगवान में ईगो नहीं है, वो तो उनके लिए नेचुरल है, वो तो कह रहे शरण में आ जा सुखी हो जाएगा। आप सुखी नहीं होना चाहते तो ठीक है। तो इस तरह संसार में आप देखोगे लोग किसी की भी शरण में जाने के लिए तैयार है, क्योंकि शरण लेना ना आत्मा का स्वभाव है, लेकिन भगवान की शरण में नहीं जाना, भगवान की शरण में नहीं जाना। तो अब जब ऐसे श्लोक आते हैं कि सबसे भगवान सर्वश्रेष्ठ है, भगवान ही सबका स्रोत है, भगवान सबसे बड़े हैं, तो फिर जो है होगा पता नहीं, ये भगवद गीता ना बड़ी माइथोलॉजिकल किताब है, पता नहीं ऐसे कैसे कैसे क्या 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 लिखा हुआ है इसके अंदर। ऐसे एक बार एक शराबी था, वो मिला एक भक्त से, कहते बता सबसे बड़ा कौन? भक्त ने कहा मंदिर, मंदिर सबसे बड़ा। कहता है लेकिन मंदिर तो धरती पे खड़ा। कहते हाँ चलो ठीक है, तो धरती सबसे बड़ी, लेकिन धरती तो शेषनाग पर खड़ी। तो भक्त ने कहा हाँ चल भाई ठीक है, शेषनाग सबसे बड़ा। फिर कहते लेकिन शेषनाग तो शिव जी की गर्दन में खड़ा। कहते हैं अच्छा चल भाई तेरा कहना फिर मान लिया, चल शिव जी सबसे बड़े। लेकिन शिव जी तो पर्वत पे खड़ा। कहते हैं अच्छा चल भाई ठीक है भाई, पर्वत सबसे बड़ा ठीक है। कहते पर्वत तो लेकिन हनुमान जी के हाथ पे खड़ा। कहते हैं तो भक्त ने कहा ठीक है भैया, हनुमान जी सबसे बड़े, तू भाई तू बता, तू बता दे सबसे बड़ा कौन है, मुझे नहीं पता, मैं अज्ञानी, तू शराबी तू ज्ञानी, तू बता सबसे बड़ा कौन। तो शराबी कहता है चार पैग पीने के बाद जो अपनी दो टांग पे खड़ा वो सबसे बड़ा। तो इस संसार में तो लोग कहते हैं ये बड़ा वो बड़ा, लेकिन भगवान वो नहीं सबसे बड़े। तो इसलिए जो है लोग जो है तरह तरह की भ्रांतियां होती हैं कि वो सबसे बड़ा कौन, मैं सबसे बड़ा, मैं सबसे बड़ा, लेकिन वास्तव में सबसे बड़े भगवान है और सारी आध्यात्मिक शक्तियों के स्रोत भगवान है। ये सोचना हमारे लिए इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए, क्योंकि संसार के जानवर भी वो कार्य कर लेते हैं। जैसे मकड़ी है, मकड़ी अपने अंदर से जाल निकालती है, उस जाल के ऊपर लीला करती है अपनी जो भी उसे करनी है, और फिर उसी जाल को खा जाती है, अंदर अंदर खा जाती है, जाल अंदर चला जाता है, और फिर कहीं और जाएगी, अपने अंदर से जाल निकालेगी, जाल बनाएगी, उसमें अपनी घर गृहस्थी बसाएगी, अपनी लीला जो उसे करनी है, लीला तो नहीं कहेंगे उसको ऑफकोर्स, आई एम जस्ट सेइंग टू अंडरस्टैंड कि भगवान लीला करते हैं। आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत दोनों में जो है भगवान लीला कर रहे हैं। बच्चे जिनके हैं उनसे रिक्वेस्ट है इनको साइलेंट मोड पे कर दें। तो आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत दोनों के स्रोत भगवान है। तो जब एक मकड़ी वो काम कर सकती है, तो ये एग्जांपल प्रभुपाद जी दिया करते हैं, एनालॉजी दिया करते थे कि मकड़ी जो है जिस प्रकार से अब जाल बुनती है उस पर रहती है और आखिर में उसी जाल को फिर से खा जाती है, तो उसी प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि सृष्टि की रचना जो है वो मेरे से हुई है और मेरे में ही विलीन हो जाती है। तो ये जो सारी सृष्टि है, तो भगवान जो महाविष्णु है, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि हो सकता है आप में से ज्यादातर भक्तों के लिए मुश्किल हो, पता नहीं क्या चल रहा है कि भगवान श्वास लेते हैं तो ब्रह्मांड बाहर निकलते हैं और श्वास जब अंदर लेते तो ब्रह्मांड अंदर जाते हैं। अच्छा, मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं कुछ डिवोटीज को यहां जप करते हुए देख रहा हूं, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अभी इस समय जप ना करें। वैसे कीर्तनिया सदा हरि, हमेशा हरि का नाम लेना चाहिए, लेकिन सिर्फ एक एक्सेप्शन है इसके अंदर। जब कृष्ण कथा चल रही हो ना, उस वक्त चैंटिंग नहीं करनी चाहिए। तो होता है क्या, ना तो उधर के रहते ना इधर के रहते, ना तो चैंटिंग ध्यान से होती है, जब चैंटिंग ध्यान से होगी तो कथा गई ना, तो ना तो हम यहां के रहते हैं ना वहां के रहते हैं। तो एक टाइम में एक ही जो होता ना, जो व्यंजन है उसका आस्वादन करें, उसके बाद दूसरे व्यंजन का आस्वादन करें। तो मेरी रिक्वेस्ट है उन डिवोटी से जो कि इस समय जप कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि टू इन वन कर लेंगे, पैरेलल प्रोसेसिंग, तो अक्सर हो नहीं पाती। वो कार चलाते भले हो जाए, लेकिन ये जो आध्यात्मिक जगत में आते हैं ना, तो वी शुड फोकस। तो ये जो है, ये कि भगवान के लिए कोई मुश्किल कार्य नहीं है, कि भगवान से ही उत्पत्ति हो, भगवान में वापस विलीन हो जाए, तो इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है भगवान के लिए। तो यहां पर प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया यहां पर कि कभी भी पदार्थ से जीव की उत्पत्ति नहीं होती। जैसे अक्सर लोग तो डॉक्टर तो यही मानते हैं ना भाई, अल्टीमेटली है क्या, आप केमिकली तो हैं, आप एक थैला है जिसके अंदर कैल्शियम है, फॉस्फरस है, मैग्नीशियम है, आयरन है, अल्टीमेटली आप इस सबका थैला ही है, ऐसे ज्यादा और कुछ नहीं है। ये सब मिल गए तो आपको इसी से जो है चेतना मिलती है। ये साइंटिस्ट या वैज्ञानिक या डॉक्टर लोग तो यही मानते हैं, आत्मा के बारे में वो नहीं जानते। तो यहां पर श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि आत्मा की जो उत्पत्ति है वो भौतिक पदार्थ के मिलने से नहीं हुई, कि किसी ने लेबोरेटरी में जो है केमिकल मिलाया हो, देखो देखो सोल बन गई, देखो देखो आत्मा, ये देखो देखो ये रही आत्मा। आत्मा कहीं भी जो है पदार्थ के मिलने से नहीं होती। अभी रिसेंटली हम लोग जब हिग्स बोसोन की बात आई थी, गॉड पार्टिकल, कि एक गॉड पार्टिकल निकाला है हिग्स बोसोन, तो ये बोसोन पार्टिकल है तो ये गॉड पार्टिकल है। एक्चुअली इसमें कोई गॉडली पार्टिकल, गॉडली जैसी कोई चीज नहीं थी, इसको थोड़ा चर्चा में लाने के लिए, थोड़ा गॉसिप में लाने के लिए इसको जो है एक टैग दे दिया गया था, गॉड पार्टिकल, कि ये जो है ये भगवान का पार्टिकल, ये मतलब ये भगवत पार्टिकल रहा होगा, इस पार्टिकल से सब कुछ आया है। तो ऑफकोर्स अगर आप इसके पूरे डिटेल में जाएंगे तो आपको मतलब लगेगा कि बेवकूफ बनाने का मतलब, इससे कहते ना यार इतनी क्यों छोड़ रहा है यार, मैं लपेटी भी नहीं जा रही है, लोग हम लोग बचपन ऐसे करते कि कितनी लंबी लंबी छोड़ रहे हैं, लपेटी भी नहीं जा रही। तो साइंटिस्ट कई बार इतनी लंबी लंबी छोड़ते हैं एक्चुअली, कि प्रोटोन जो है जो वो बहुत ही 10 टेरा वोल्ट की स्पीड पे आपस में टकराते हैं तो एक बड़ा प्रोटोन बनता है, बड़ा अनस्टेबल होता है और उससे जो है धीरे धीरे सृष्टि शुरू हो जाती है। एक्चुअली भगवान से सृष्टि हुई है सब चीजों की, इस बात के लिए आपको कम श्रद्धा चाहिए, इस बात को समझना आसान है, बजाय कि इन साइंटिफिक थ्योरी के कि ये जो हिग्स बोसोन जैसा पार्टिकल है, पार्टिकल जैसा कुछ था, पदार्थ था, उसे सृष्टि की रचना हुई, इस बात को समझना बड़ा मुश्किल है। इसके लिए ज्यादा श्रद्धा चाहिए जो साइंटिस्ट हमको बताते हैं। तो भला साइंटिस्ट ऐसा क्यों बताते हैं, उनको क्या मिलता है ऐसा करके, वो पूछ सकते हैं। पेट का सवाल, पापी पेट का सवाल है भाई। अब गवर्नमेंट से जब इतना पैसा मिलेगा, इतनी पर्क्स मिलेंगी, इतने कंफर्ट्स मिलेंगे, जब जो टेट्रॉन जो जो कि हैड्रॉन कोलाइडर है ना, जिसमें कि वो इलेक्ट्रॉन को कोलाइड कराते हैं ये इस एक्सपेरिमेंट के लिए, वो $10 बिलियन का था। अब गवर्नमेंट पूछेगी भाई क्या किया उसका, $10 बिलियन का क्या किया तुमने, तो क्या बताएंगे फिर, कुछ तो कहानी बतानी है ना, है कि नहीं भाई। अपने बीवी बच्चों को खिलाए हैं, अपने फ्लैट बनाए हैं सिटीज में, और जो है शॉपिंग मॉल्स में शॉपिंग की है भारी भरकम, सारा पैसा जो है हड़प गया। अब क्या करें, 2100 साइंटिस्ट, कुछ तो निकालना है ना। तो इस प्रकार की ऊटपटांग थ्योरीज जो है वो साइंटिस्ट प्रपोज करते हैं, हिग्स बोसोन। तो हम लोग जब गए थे NDTV में, मैं भी गया था NDTV में, तो वहां पर जितने कोई साइंटिस्ट भी आया हुआ था तो उसकी हिम्मत नहीं थी इस थ्योरी के ऊपर कुछ बोलने की। क्यों? क्योंकि एक मजाक है लोगों की श्रद्धा के साथ भी, पर लोग मान लेते भाई साइंटिस्ट जो बोले वो तो सही है ना। क्यों? क्योंकि साइंटिस्ट हमको थोड़ी थोड़ी सुविधाएं देते हैं, देखो पंखा चल रहा है, ये AC चल रहा है, किसने दिया? साइंटिस्ट ने दिया। तो अब वो जो बोलेंगे हमें पूरा विश्वास करना होगा उसका। तो ये है वास्तव में अंधविश्वास। तो जो चेतना का स्रोत है वो क्या है, वो तो किसी को पता नहीं। कॉन्शियसनेस होता है ना, कॉन्शियसनेस, हम लोग कॉन्शियस है ना। जैसे कि मैंने अभी आपको एक कुछ बात सुनाई तो आप हंस दिए, मैंने आपको कोई बात अभी गंभीर सुना रहा हूं तो आप ध्यान से सुन रहे हो उसको, आपको फोन आया था कि सचिन शायद आपका रिलेटिव वो बीमार है, आप दुखी हो जाओगे। ये इमोशंस है ना, ये इमोशंस पदार्थ के अंदर कैसे आएंगे? ये इमोशन आ सकता है इसके अंदर कभी, इस पदार्थ के अंदर? पदार्थ के अंदर इमोशंस कहां से आएंगे? तो इमोशंस का स्रोत क्या है? अगर हम कहें पदार्थ से सृष्टि हुई, भगवान से नहीं हुई, या हम कहें बंदरों से आई सृष्टि, लोग ये भी तो मानते हैं ना साइंटिस्ट लोग, हम लोग बंदरों से आए। अब उन्हीं वैज्ञानिकों से पूछो कि बंदरों से आप आ रहे हो तो आज के बंदर क्यों नहीं इंसान बन रहे? आज के बंदर बंदर ही रह रहे हैं, है ना। बंदर के आज कुछ ऐसे लोग दिखने चाहिए थे ना, इंसान और बंदरों के बीच में थोड़े इंसान होते थोड़े बंदर होते तो हमको लगता है थोड़े समय बाद इंसान बन जाएंगे, अभी बीच में अटक गया है, कोई नहीं है रस्ते में निकल जाएगा। कोई ऐसा दिखता है कोई व्यक्ति? बंदर बंदर ही दिखते हैं, इंसान इंसान ही दिखते हैं, क्योंकि शुरू से बंदर बंदर ही है, इंसान शुरू से इंसान ही है, कोई रिलेशन नहीं है। और भी आर्कियोलॉजिकल डिटेल्स हैं बहुत सारी इसकी, जिसमें मैं नहीं जाऊंगा अभी, जिससे साबित होता है कि हम लोग बंदरों से बिल्कुल भी नहीं आए। लेकिन एनसीईआरटी किताबों में क्या पढ़ते हैं बच्चे? ये तो पढ़ते हैं नास्तिक थ्योरीज, भगवान जैसी कोई चीज नहीं होती, हम लोग किससे आए? बंदर से आए। हम लोग कैसे आए? बम फटने से आए। तो बोला कैसे तो इसीलिए जो है जब बच्चे ये सब पढ़ते हैं ना शास्त्र भगवद गीता, तो कहते हैं पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, भगवान से कैसे आ सकता है, हमने क्या पढ़ा एनसीईआरटी में, धूमधड़ाके से आए, बंदर से आए, बंदरिया से आए, लेकिन भगवान से? तो ये जो है इस प्रकार की जब ब्रेन वॉशिंग, आई एम सॉरी ब्रेन डर्टिंग एजुकेशन जो होती है कभी कभी, तो वो जो है उसे नास्तिक बात फैलता है। ऑफकोर्स वो एजुकेशन जरूरी है क्योंकि पेट पालना है भाई, बड़े होंगे दिखाएंगे भाई डिग्री है नौकरी दे दो थोड़ा पैसा मिलेगा, उसके लिए वो पढ़ाई करनी जरूरी है, ठीक है कर लो, लेकिन यहां पर ना भगवद गीता का ज्ञान ही होना चाहिए, नहीं तो ये सारा अज्ञान है वास्तव में। तो यहां पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि आत्मा ही सृष्टि, आत्मा सृष्टि का मूल क्षेत्र है और पदार्थ आत्मा के द्वारा उत्पन्न होता है। पदार्थ आत्मा के द्वारा उत्पन्न होता है। अब ये थोड़ा अजीब सा स्टेटमेंट है ना, किसी को समझ आया ये स्टेटमेंट? पदार्थ 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 आत्मा से आता है। कोई यानी गैसेज लिखे आज की, क्या लिखे यहां पर प्रभुपाद जी ने इसमें? आत्मा का मतलब यहां पर है चेतना। जो भी चीज होगी ना पहले वो चेतना में आती है, फिर उसके बाद पदार्थ में आती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को पानी पीना है ना, तो पहले मेरे को बहुत प्यास लगी है तो मैं क्या करूंगा, मैं हटाऊंगा इसको और फिर पानी पीऊंगा। प्यास भी लगी थी तो लेकिन पहले जो है क्या हुआ, डिजायर आई, पहले इच्छा आई, प्यास लगी है ना, मेरी चेतना में ये इच्छा आई कि मुझको पानी पीना चाहिए, मुझको प्यास लगी है, फिर उसके बाद मैंने है मतलब स्थूल जगत के साथ इंटरेक्शन शुरू की। लेकिन पहले कहां चेतना? पहले चेतना में हुए ना, जो होता है पहले चेतना में होता है। जैसे पेंटर जो है पेंटिंग पहले कहां बनाता है? कैनवस से पहले कहां बनती है पेंटिंग? माइंड में बनती है, उसकी चेतना में बनती है ना, या इंटेलिजेंस मतलब एक 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 सूक्ष्म पदार्थ बनती है ना, चेतना बनाता है वो पहले कि भाई मैंने ऐसा बनाऊंगा, पहाड़ होंगे, ये होगा, उससे पंछी उड़ रहे होंगे, यहाँ एक झोपड़ी होगी, यहां से नदी बहरी होगी, तो पहले जो है यहां बन जाती है, उसके बाद ये तस्वीर कैनवस पे आती है यानी पदार्थ के ऊपर आती है। तो इसीलिए हम जहां देखेंगे ना चारों ओर जो भी चीज आती है, जैसे अभी ऑडिटोरियम मिले, पहले जो है इसका नक्शा जो है इसकी कल्पना की गई होगी कि ना हम ऐसा ऐसा बनाएंगे, इसमें 350 सीटें होंगी और यहां पर ऐसा हम प्लेटफॉर्म बनाएंगे, ऐसा सा होगा, टेक्नोलॉजी ऐसे ऐसे होगी। पहले जो है क्या हुआ, सूक्ष्म स्तर पे होता है, उसके बाद स्थूल स्तर पे होता है, ओके चेयर्स वाकई में लगाई गई, वेल्डिंग हुई, ये हुआ वो हुआ। तो पहले जो है सूक्ष्म स्तर पे आते हैं, फिर हम स्थूल पे आते हैं। हम कोई भी चीज देखें इस संसार में, कोई छोटे से छोटा डिसीजन, कोई भी कार्य हम करते हैं, पहले सूक्ष्म यानी आत्मा के लेवल पे, चेतना के लेवल पर, और फिर ग्रॉस लेवल पे हम लोग करते हैं। इसलिए जो है चेतना को ट्रेन करना बहुत जरूरी है। कई बार लोग जो है सिर्फ मॉरल एजुकेशन जब देते हैं ना, बी अ गुड बॉय, बी अ गुड गर्ल, सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलते, सबका भला सोचना चाहिए, इससे ना बात बनती नहीं, फिर भी लोग गलत काम करते हैं। क्यों? क्योंकि ना चेतना की जो है कोई ट्रेनिंग नहीं है, किसी स्कूल किसी कॉलेज में नहीं है। चेतना की वो ट्रेनिंग है ना, फिजिक्स पढ़ाई जाती है, केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, मैथ्स पढ़ाई जाती है, इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती है, सब पढ़ाया जाता है, लेकिन चेतना के बारे में कोई ट्रेनिंग नहीं है। इसलिए हम लोग देखते हैं इतना पढ़ा लिखा है, पोस्ट ग्रेजुएट है, पीएचडी है, फिर भी ऐसे काम करता है। ऐसे ओसामा बिन लादेन बीटेक सिविल इंजीनियरिंग, बड़ी लर्नेड है, पढ़े लिखे हैं, क्या काम करते हैं? मिलिटेंट है, टेररिस्ट है। क्यों? क्योंकि चेतना की ट्रेनिंग है ही नहीं। तो चेतना को गाइड करना बहुत जरूरी, क्योंकि हर चीज जो है पहले चेतना में आती है, फिर बाद में स्थूल जगत में आती है। इसलिए चेतना की जो है इंजीनियरिंग बहुत बहुत जरूरी है। एक बार किसी ने पूछा था, एक बार मेनका गांधी ट्रेवल कर रही थी हमारे एक महाराज के साथ, तो कहती है उसको पता है ये हरे कृष्णा वाले बस ये हरे कृष्णा कीर्तन करते हैं, कोई समाज सेवा तो कर रही नहीं इन लोगों को, निठल्ले लोग हैं, कामचोर लोग हैं ये। कहते हैं स्वामी जी व्हाट डू यू डू फॉर इकोलॉजी, आप जो है इकोलॉजी के लिए मतलब पर्यावरण के लिए क्या करते हैं? वो तो एनवायरमेंटलिस्ट है मेनका गांधी। तो कहती है स्वामी जी आप क्या करते हैं बताइए। सोमाना ने कहा वी वर्क ऑन इनर इकोलॉजी। इनर इकोलॉजी, ये इनर इकोलॉजी क्या होता है? तो महाराज ने कहा कि व्हेन द इनर इकोलॉजी इज इन बैलेंस द आउटर इकोलॉजी द आउटसाइड इकोलॉजी इज ऑटोमेटिकली टेकन केयर ऑफ। यानी कि जब अंदर का पर्यावरण ठीक होता है ना, तो बाहर का पर्यावरण अपने आप ठीक हो जाता है। इसलिए हम बाहर जो है भले कितनी अच्छी सुविधाएं दे लें, लेकिन सुविधाओं का मिसयूज ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि गड़बड़ी यहां ज्यादा है, यहां के पेच को हमने कभी कसे ही नहीं, बाहर के पेच सब टाइट है लेकिन फिर भी गड़बड़ी होती है। क्यों? क्योंकि यहां के पेज तो गिरे हुए हैं, लूज भी नहीं है, गुम गए हैं पेज, पता नहीं कहां है, पेज है ही नहीं, क्या करें? तो इसलिए क्या है, मिसयूज ज्यादा होता है क्योंकि हम लोग जो है, क्योंकि हमने कभी अंदर के पेज कसे नहीं, चेतना के पेज तो कभी कसे ही नहीं, बाहर के पेज सारे कस डाले, हाँ सब फिट है भाई, एकदम फिट है भाई, क्वालिटी चेक हो गया, लेकिन अंदर की क्वालिटी का क्या? तो हम अंदर की क्वालिटी पे जब ध्यान नहीं देते ना, तो बाहर भले ही परफेक्ट सिस्टम हो, हम उस सिस्टम का मिसयूज करेंगे। तो इसके प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, जो स्पिरिट है या जो चेतना है वो स्रोत है स्थूल का। इसके अंदर कंट्रोल करेंगे ना, बाहर अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। ये रिमोट कंट्रोल है, अब रिमोट कंट्रोल घुमा दो फिर चैनल चेंज करते रहो, कि तीसरा चैनल लगाओ जरा, चैनल क्यों नहीं चेंज हो रहा, कैसे चेंज होगा? तो इसलिए जो है हमें सूक्ष्म पदार्थ, जो सूक्ष्म लेवल पे अपने आप को शुद्ध करना होगा, इसलिए जो है ये जानना बहुत जरूरी है। और इसका एक और मीनिंग ये है कि भगवान की मूल शक्ति जो है भगवान की स्पिरिचुअल एनर्जी ही है, उसके बाद भगवान मटेरियल एनर्जी बनाते हैं, उसके बाद उसे एक्सपैंड करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई अगर जैसे शीला दीक्षित है, या कोई भी अगर पहले दिल्ली का कोई राजा रहा होगा या फिर कोई मिनिस्टर रहा होगा, तो उसने क्या किया, पहले ना शहर बना दिया। शहर बनाने के बाद उसको किसी ने कहा सर आपने जेल तो बनाया ही नहीं, हमारे यहाँ कैदी भी कितने सारे हैं ना, तो कैदियों के लिए भी तो जगह बनानी होगी ना। ओ यस 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 यस, चलो जेल ही बनाते हैं। तो पहले क्या आता है, नॉर्मल शहर जहां नॉर्मल सिटीजन लोग रहते हैं, जो सब रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं। उसके बाद जेल बनाया जाता है उन लोगों के लिए जो कि गवर्नमेंट को फॉलो नहीं करते। उसी तरह से भगवान आध्यात्मिक जगत ही बनाते हैं बस आप, लेकिन उसके बाद क्या है, उनको भौतिक जगत बनाना पड़ता है उन जीवात्माओं के लिए जो कि भगवान से स्वतंत्र होकर भोगना चाहती हैं। ओहो हो, ये तिहाड़ जेल ही बनाना पड़ेगा आप, तो भौतिक जगत ही बनाते हैं भगवान फिर। तो भौतिक जगत भगवान ने अपनी इच्छा से नहीं बनाया, किसकी इच्छा से बनाया, हमारी इच्छा से बनाया, हमने बात यह नहीं हम अलग से भोग करेंगे, ठीक है भाई ये ले। तो एक अलग जो है ये भौतिक जगत दिया है इसने, यहां पर हमें इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, एक्चुअली इच्छाओं की पूर्ति भी नहीं होती यहां पे, इच्छाएं फ्रस्ट्रेट होती हैं यहां पे, ये इच्छाओं को पूरा करने की जगह नहीं है संसार, ये इच्छाओं को फ्रस्ट्रेट करने की जगह है ये। जैसे बच्चा है वो पिता से कहे पापा मुझको ब्लेड से खेलना है, क्या बेटा क्या बोला तुमने, पापा मुझे ब्लेड से खेलना है, नहीं बेटा ब्लेड से नहीं खेलते बेटा, चोट लग जाती है, खून निकल आता है ना, ब्लेड से ब्लेड खेलने वाली चीज थोड़ी है, नहीं पापा मेरे को खेलना है, मेरे को ब्लेड से खेलना है पापा। पापा कहते हैं यार कभी ब्लेड देखा तूने, हाँ देखा है मैंने, एक होता है ऐसा दिखता है, ठीक है, कहते हैं रबड़ का ब्लेड दे देते हैं उसे, कहते ले खेल ले। तो अब रबड़ के ब्लेड के साथ लगाओ और उसको क्या काटना है, कुछ ना कुछ ब्लेड से काटना है, काट रहा है नहीं कट रहा है, रबड़ के ब्लेड से कटता है कुछ, कट रहा है नहीं कट रहा, नहीं कर रहा है, नहीं काट रहा, काट रहा है नहीं कट रहा, काट रहा है नहीं कट रहा, फ्रस्ट्रेट हो जाता है वो, क्या पिताजी पिताजी मैं क्या करूं मैं। बेटा जब तू बड़ा हो जाएगा ना तो तेरे को मैं असली वाला ब्लेड दूंगा, पहले तो मेरा कहना मानेगा ना तो तेरे को मैं असली वाला ब्लेड दूंगा। तो कहना मानने का मतलब क्या, जीव जो है जब भगवान की इच्छा के अनुसार चलना शुरू कर देता है ना तो भगवान कहते हैं आ जा आध्यात्मिक जगत में आ जा, अब तू असली जगह में आ जा। अदरवाइज क्या है, पप्पा मेरे को ब्लेड चाहिए, जा भौतिक जगत में जा, वहां लगा रहे तू फ्रस्ट्रेट होता रहे। तो यहां क्या है, भौतिक इच्छाएं फ्रस्ट्रेट करने की जगह है, ये भौतिक इच्छा को पूरी करने की बिल्कुल जगह नहीं है, चाहे आप कुछ भी देख लीजिए। और आप कोई कह सकता है लेकिन रोजी जब इच्छा होती है तो हम ऐसा कुछ कर लेते हैं और उसके बाद मन संतुष्ट हो जाता है, मन संतुष्ट तो थोड़े समय के लिए हो जाता है लेकिन तृष्णाएं और ज्यादा तेज बढ़ जाती हैं, अगली बार वो तृष्णा और उसमें ज्यादा पावर होगी क्योंकि उसके संस्कार और गहरे हो गए ना। तो अगर आपके साथ ऐसा हो जैसे कि आप दो चपाती खाओ तो अगली बार आपको भूख जो है तीन चपाती की लगे, फिर आपको तीन चपाती मिल जाएंगी किसी तरह से, फिर उन तीन चपाती से आपको भूख चार चपाती की लग जाए तो चार चपाती मिलेगी, माँ पांच चाहिए, बेटा मैं गरीब हूं बेटा कितना दूंगी किधर को मैं। तो बाद में क्या होगा, तृष्णा बढ़ गई लेकिन साधन कम बढ़ गए, उससे क्या होगी फ्रस्ट्रेशन होती है संसार में। तो भले ही जो है हम कोई हो सकता कोई देवी देवताओं के लेवल पे चला जाए, कोई अमीर हो गया, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट बन गया, कोई फिल्म स्टार बन गया, तो हो सकता है ज्यादा भोग कर ले, लेकिन ज्यादा भोग करने के बाद क्या है तृष्णाएं भी उतनी तेज हो जाती हैं। अब उन तृष्णाओं को हमेशा थोड़ी ना सेटिस्फाई कर पाएगा, वो फ्रस्ट्रेशन लाती है। तो इसीलिए जो है ये समझना बहुत बहुत जरूरी है कि वास्तव में भगवान भौतिक और आध्यात्मिक जगत दोनों के स्रोत हैं, और क्योंकि हमने गलत काम किए इसलिए हम यहां पर फंसे हुए हैं। और जब हम जान लेंगे ना कि भगवान ही इन सब के स्रोत हैं तो हम शांत हो जाएंगे कि भगवान अल्टीमेटली यू आर द एंजॉयर, व्हाई बिकॉज यू आर द कंट्रोलर, व्हाई यू आर कंट्रोलर बिकॉज यू आर द प्रोप्राइटर, भगवान ही मालिक है इसलिए वो कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि वो कंट्रोल कर सकते हैं इसलिए उसका भोग भी कर सकते हैं। लेकिन हम आर्टिफिशियली खुद को समझें कि मैं ही मालिक हूं, अब मालिक तो हम है नहीं इसलिए उसे कंट्रोल भी नहीं कर पाते इस संसार को, अब कंट्रोल नहीं कर पाते तो ठीक से भोग भी नहीं पाते, तो होता क्या है फ्रस्ट्रेशन होती है। तो इनमें जो है ये जो शास्त्र है इनको समझने के लिए बहुत बहुत तो एक्चुअली शास्त्र समझने के लिए ना एक सीक्वेंस है, उसको कहते हैं होल्स। जैसे अभी आपने कानों के होल्स से आप क्या कर रहे हैं समझने की कोशिश कर रहे हैं, एच ओ एल ई एस, एच का मतलब होता है हियरिंग, एच का मतलब हियरिंग, ओ से मतलब होता है ऑब्जर्वेशन, ठीक है, एल से मतलब होता है लर्निंग फर्दर, और ई का मतलब होता है एक्सपेरिमेंटेशन, और एस का मतलब होता है स्प्रेडिंग इट, स्प्रेड करना उसे। जैसे कि अगर आप भौतिक जगत में भी देखें ना कोई चीज समझनी हो तो हम इसी सीक्वेंस में समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी को पिंपल निकला है, प्रभु जी पिंपल निकला है क्या करूं, फेयर एंड हैंडसम लगा, पिंपल भी चला जाएगा गोरा भी हो जाएगा, फेयर एंड हैंडसम लगा। अच्छा पहला स्टेप कौन सा था, हियरिंग, सुना, फेयर एंड हैंडसम लगाएगा ना तेरा पिंपल चला जाएगा और गोरा भी हो जाएगा। अच्छा अगला क्या, ऑब्जर्वेशन, देखा कौन लगाता है, और ये लगाता है, फेयर एंड हैंडसम इसने लिया लगाया, पिंपल भी चला गया, दो हफ्ते बाद थोड़ा गोरा भी हो गया, ऑब्जर्वेशन, लर्निंग फर्दर, कहां मिलता है भाई, घड़ी में गया केमिस्ट की शॉप पे, भाई फेयर एंड हैंडसम क्या दाम, लर्निंग फर्दर, उसके अंदर पड़ा लगाते कैसे हैं, अच्छा इसको ऐसे लगाते हैं, ओ फिर अब ई क्या था, एक्सपेरिमेंटेशन, लेकर गया देखा कोई देख तो नहीं रहा, बाथरूम में लगाया, हाँ रोज लगाया लगाया लगाया, पिंपल चला गया, गोरा भी हो गया, अरे ये तो बहुत बढ़िया है। आखिरी एस क्या होता है? स्प्रेडिंग, लोगों को बताना, अरे प्रभु पिंपल निकला ना, फेयर एंड हैंडसम लगाने का, पिंपल भी चला जाएगा गोरा भी हो जाएगा। हाँ तो ये क्या है? सीक्वेंस, किसी चीज को समझने की, उसमें श्रद्धा लाने की। तो जैसे ये उसने क्या किया, शुरू शुरू में वो काला था, तो उसने पहले हियरिंग की, फेयर एंड हैंडसम लगा, गोरा हो जाएगा, पिंपल भी चला जाएगा। उसके बाद क्या किया उसने? ऑब्जर्वेशन, फिर क्या की? लर्निंग फर्दर, उसकी जांच पड़ताल की, कैसे लगाते हैं ये वो, फिर एक्सपेरिमेंटेशन, फिर आखिर में क्या किया भाई, सक्सेसफुल हो गया तो स्प्रेडिंग। अरे भाई जिसका पिंपल निकला काला है ना, अगर तू फेयर एंड हैंडसम लगाने का, इससे श्रद्धा आ गई। उसी तरह से हम आध्यात्मिक ज्ञान भी समझते हैं। अब जैसे आप मंडी क्लास में आते हैं, यहां पर क्या किया? श्रवण किया, एच ओ, यहां देखा भाई ये भक्त लोग कौन है जो धोती कुर्ता पहन के घूमते हैं, जो तिलक लगा के घूमते हैं, गले में कंठी लगा के घूमते हैं, इनको इनको इनसे जाके पता करते हैं, इनको ऑब्जर्व किया। ये लोग कहते तो हैं कि भाई भक्ति करने से मन शांत होता है, हाँ यार मन तो शांत है, ये लोग बहुत एकदम कोल्ड कूल लोग हैं। लर्निंग फर्दर, अच्छा ये माला कहां से मिलती है? बुक शॉप में मिलती है, हाँ भगवत गीता वहां मिलती है, मंदिर ऊपर है, ओ अच्छा, और कौन कौन सा सेंटर है? पंजाबी बाग में सेंटर है। लर्निंग फर्दर, उसके बाद क्या? प्रभु जी माला सिखाओ ना। एक्सपेरिमेंटेशन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक्सपेरिमेंटेशन किया तो उसके बाद क्या हुआ? जाना यार काम तो करता है, बहुत बढ़िया। तो इसके बाद क्या किया उसका? प्रचार किया, स्प्रेडिंग इट ओवर। तो इससे जो है आपकी श्रद्धा एकदम पक्की हो जाती है। तो लर्निंग किससे शुरू होती है? एच ओ एल ई एस, एच फॉर हियरिंग, ओ फॉर ऑब्जर्वेशन, एल फॉर लर्निंग फर्दर, ई फॉर एक्सपेरिमेंटेशन, आखिर में एस फॉर तो यही है एक्चुअली स्पिरिचुअल नॉलेज को समझने का, उसको कॉन्सेप्ट को समझने का यही तरीका है वास्तव में। तो ये तो यहां पर और प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं, क्या है? यहां पर भगवान विष्णु की, भगवान प्रभुपाद जी बात कर रहे हैं तात्पर्य के अंदर कि विष्णु जो है उनसे सारी शक्तियां आती हैं और उन्हीं में जो है विलीन होती हैं। महाविष्णु का मैंने नाम लिया था, तो कोई कह सकता है लेकिन प्रभु जी कृष्ण जो है परम भगवान आप कहते हैं, जब सारी सृष्टि उन्हीं से निकलती है, उन्हीं में विलीन होती है, तो विष्णु है ना परम भगवान, राइट? जैसे कि अक्सर आप बाहर के लोगों से मिलेंगे ना तो ये बताते हैं कृष्ण जो है वो विष्णु का अवतार है। ये तो सुनते हैं ना हम लोग, आप ये इस्कॉन में आके उल्टा सुनेंगे, प्रभु जी इस्कॉन वाले उल्टी एजुकेशन देते हैं, कहते हैं जी कृष्ण विष्णु, विष्णु जो है वो कृष्ण का अवतार है। ये क्या बात हुई? आप ये इस्कॉन में उल्टे काम क्यों करते हो? सारी उल्टी एजुकेशन इस्कॉन में देनी, अच्छा खासा हमने बी आर चोपड़ा से सीखा है कि विष्णु के अवतार है कृष्ण, हमारे गुरु हैं बी आर चोपड़ा जी, आप हमें ये सब सिखा रहे हो। तो कृष्ण जो है वास्तव में परम भगवान है, लेकिन कृष्ण क्या है वो ना लीला में व्यस्त रहते हैं, उनको ये सब ताम झाम नहीं करना होता। जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, एक ओनर होता है, एक ओनर होता है और एक सीईओ होता है। ओनर क्या है, फ्लोरिडा में अपना गोल्फ खेलता है, गोल्फ खेलता है बस, उसे लीला, उसको लेना देना नहीं क्या कहां क्या काम हो रहा है ऑफिस में, डिटेल्स कौन सी फाइल है ये वो। उसने क्या किया, अपना एक सीईओ अपॉइंट किया हुआ है जो कि दिल्ली में काम करता है, वो देखता है भाई किसको रिक्रूट करना है, किसको नहीं करना है, किसको कितनी सैलरी देनी है, सैलरी हाई कितनी होगी, ये वो फलाना ढिमकाना वो देखता है। ऑफिस वाले क्या जानते हैं, हमारा बॉस कौन? सीईओ। भाई जो अंदर आता है ना वो सीईओ की मर्जी के बिना नहीं आता। मैं आया किसी मर्जी से? सीईओ की मर्जी से। हम सब किसकी मर्जी से आए इस ऑफिस में? सीईओ की मर्जी से। एक दिन क्या होता है, फ्लोरिडा में मालिक सोचता है एक जाके देखूं दिल्ली में मेरी कंपनी का क्या हाल है, फोन करता है, हाँ सीईओ आ रहा हूं दिल्ली, हाँ तो एक हफ्ते में बाद आ रहा हूं मैं, गेट एवरीथिंग रेडी, ओके। तो जब एक हफ्ते बाद कंपनी का ओनर सीईओ के साथ कंपनी में घुसता है ना, तो लोग कहते हैं भाई जो आया ना सीईओ की कृपा से ही आया है, ये आया ना ये भी सीईओ की कृपा से आया। लेकिन असल में ये कौन है? ये तो ओनर है, उसने ये सीईओ उसका एम्प्लॉय है, क्यों? क्योंकि ओनर क्या है, उसका काम लीला का, लीला खेलना है, फ्लोरिडा में गोल्फ खेलता है वो, बस उसको और कोई काम नहीं। लेकिन कंपनी वाले का सोचते हैं, भाई कंपनी में जो आया सीईओ की मर्जी से आया। तो सीईओ कौन? विष्णु, नारायण, भगवान। लीला में आनंद लेने वाले कौन? कृष्ण। उनको अपने भक्तों के साथ लीला करनी है, यशोदा मैया, आनंद बाबा, राधा रानी, ललिता, विशाखा, ओ इसमें आनंद है। सीईओ का पॉइंट क्या है? विष्णु ये सृष्टि वगैरह देखो यार, भौतिक सृष्टि, ये भौतिक सृष्टि, आध्यात्मिक सृष्टि, ये सब, आई एम बिजी विद लीला। तो कभी कभी क्या है, वो जब आते हैं, ओके मैं भौतिक जगत में आ रहा हूं विष्णु, तो हमको क्या लगता है, भाई विष्णु भगवान जो आया विष्णु की कृपा से आया, भाई कृष्ण आए तो किससे आए? विष्णु से आए। लेकिन कृष्ण कौन? ओनर, ये तो सीईओ है विष्णु, वो देखते हैं भाई, मैनेज करते हैं यहां का ऑफिस सारा, भौतिक जगत का। लेकिन ऊपर जो है वहां भी लीला करते हैं, यहां भी आते हैं, यहां भी लीला करते हैं। यहां पर क्यों लीला करते हैं? आकर्षित करने के लिए। जीवेर कारणे आशिया प्रपंचे लीला कोयले सुविस्तार है। तो इसलिए जो है श्री कृष्ण, वो जो है विष्णु, नारायण, इन सबके स्रोत है। इसलिए कभी को बोलता है ना, देखिए आप कह रहे कृष्ण भगवान है, हम भी मानते कृष्ण भगवान है, तो हम उसे ही कहते हैं, भाई साहब सेम ओपिनियन, कृष्ण भगवान नहीं है, भगवान तो विष्णु है, नारायण है, ये भगवान है, परम सत्य है कृष्ण। क्योंकि परम सत्य से कौन आता है? विष्णु आते हैं, नारायण आते हैं, नरसिंह आते हैं, राम आते हैं, कच्छप आते हैं, बुद्ध अवतार, ये अवतार, परशुराम, ये सब आते हैं, उन्हीं से आते हैं। एक बार जैसे यशोदा मैया ने बांध दिया था जब कृष्ण को, जब दामोदर लीला हुई, तो बलराम जी, ए किसने बांधा मेरे कृष्ण को, हा? कौन है, कौन है वो जिसने कृष्ण को बांधा? यशोदा मैया ने अपने हाथ में छड़ी ली हुई थी, कहते हाँ मैंने बांधा है, क्यों, क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम है तेरे को? कहते हमने कृष्ण को बांधा है, पता है ये नरसिंह अवतार, कच्छप अवतार, बुद्ध अवतार, परशुराम अवतार, ये सारे अवतारों के स्रोत है ये। यशोदा मैया ने कहा, क्या मन, मैंने ठेका लिया सारे अवतारों का, ये मेरा कृष्ण है बस, मैं जानती हूँ, क्योंकि वहां क्या है, लीला बस और कुछ नहीं, आनंद। यहां क्या है, सब कुछ निरानंद। इसलिए लोग क्या टीवी के आगे बैठते हैं, चैनल चेंज करते रहते हैं, बदलो बदलो, बोरिंग है, बदलो बदलो बदलो, क्योंकि यहां सब निरानंद, सब निरानंद। शुरू शुरू जॉब में घुसते हैं, बड़े एक्साइटेड होकर घुसते हैं, अरे हम जॉब करेंगे, पैसा कमाएंगे, ये वो, दो महीने बाद बोरिंग हो जाता है, अरे क्या जॉब बदलो यार, बड़ा बोरिंग है, बड़ा मोनोटनस हो गया, बदलो ना। तो लाइक दैट, जैसे चाहे जो भी, चाहे शादी हो जाए, बड़े एक्साइटमेंट के साथ घुसते हैं, उसके बाद ओहो थोड़ा वेट कर लिया होता है, बेटर मॉडल मिल गया होता है, उससे बोर हो जाते, क्या करें, मोबाइल फोन बोर हो गए, क्या पुराना मॉडल, वाइफ अरे पुराना मॉडल, नया मॉडल मिल जाए, तो हर चीज से जो है बोर हो जाते हैं। पतियां भी अपने पति से बोर हो जाती हैं, क्या जब जैसे शादी की थी तब अच्छा खासा, अब क्या है, पेट निकल आया, सर के बाल उड़े, क्या थोड़ा वेट कर लिया होता, अच्छा मॉडल मिल गया होता, तो क्या यहां सब बड़ा बोरिंग बोरिंग है, वहां पर सब एक्साइटिंग है। नव यौवनम, हर पल नया, हर पल नया, पूछो क्या चीज होगी, क्या चीज है वो, आनंदम बुद्धि वर्धनम। जैसे होता ना, जैसे कि एक जैसे जूस का कैन होता है, उसके ऊपर लिखा होता है कि उसका एक्सपीरियंस कैसा होगा, रिफ्रेशिंग, टेस्टी, डिलिशियस, यम्मी, उसी तरह से भगवान के धाम की जो है उसके ऊपर भी लिखा हुआ है, आनंदमय, रोमांचकारी, प्रेम, प्रेम से भरा हुआ। तो ये जो है ये उसके ऊपर है टैग लगा हुआ। संसार के ऊपर भगवान ने क्या टैग लगाया, दुखालयम, अशाश्वतम। कहते ना भगवान, आपसे ज्यादा हमको पता है, ये सुखालयम है। भगवान कहते बेटा सुखालयम नहीं, सुखालयम है, यहां तू सूख जाएगा, यहां सुखी नहीं होगा, सूख जाएगा तू। तो भगवान जो है इसलिए जो है इस प्रकार से लीला करने के लिए, तो ओनर भगवान श्री कृष्ण, सीईओ विष्णु नारायण, वो बिजी है। तो ये बात हमें समझनी बहुत जरूरी है। इसलिए कभी कभी जो है विष्णु का नाम आता है तो कंफ्यूज होता है, ये प्रभुपाद जी कभी विष्णु बोलते हैं, कभी कृष्ण बोलते हैं, अल्टीमेटली तो कृष्ण ही है वास्तव में, क्योंकि कृष्ण से ही तो विष्णु आए। इसलिए विष्णु में कितने, 60 गुण, कृष्ण में 64 गुण। तो परम भगवान जो है इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण है और वो ही सारे आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत का स्रोत है। ठीक है, तो मैं यहीं पे विराम दूंगा। किसी को कोई प्रश्न हो, किसी को सवाल है या मैं अगर नजर नहीं आ रहा थोड़ा खड़े हो जाए, क्योंकि भाई कहता है कि अंगड़ाई भी ले लेते तो पता नहीं लगता भाई कौन हाथ खड़ा कर रहा है, या कहीं अपनी शर्ट ठीक कर रहे होते हैं। हाँ बताइए, आपको प्रश्न नहीं पूछे, शर्ट ठीक कर रहा था भाई, कोई सवाल नहीं। सेल्फ रियलाइज्ड, आप तो साक्षात्कार हो गया 45 मिनट में, अरे कमाल है। और एक सवाल है, ओ ओके, नहीं नहीं थोड़ा क्या टंग ट्विस्टर थोड़ा, हाँ हाँ, आत्मा के बिना शरीर का अस्तित्व नहीं है। हाँ ओ अच्छा, हाँ भाई ये भी अच्छा है, हाँ कि भाई शरीर आत्मा के बिना शरीर का अस्तित्व नहीं, भाई आत्मा छोड़ दे तो क्या शरीर, क्या यहाँ पड़ा होगा केमिकल है वो, है ना, द बैग ऑफ प्रोटीन, दैट्स इट। लेकिन अगर शरीर ना हो तो तो इस संसार में ना हमको शरीर की आवश्यकता पड़ती है भौतिक जगत में, क्यों, क्योंकि हर चीज है पदार्थ ही बनी हुई है ना। अब जैसे ये क्या है, ये पदार्थ है ना ये, अब इसके साथ डील करने के लिए आत्मा को क्या चाहिए, वैसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए ना ताकि इससे डील कर सके, राइट। जैसे कि अगर आप से फिजिक्स लेबोरेटरी में जाते हैं है ना, और कोई चीज बहुत गर्म गर्म होती है, यहां से किचन में है, किचन में कुछ गर्म गर्म है, उसको उठाने के लिए क्या आपको एक इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पड़ती है जिससे कि आप उसके साथ डील कर सके, राइट। तो आत्मा क्या है, स्पिरिट है, चिन्मय है। अब वो भला पदार्थ को छुएगी कैसे, उसके साथ इंटरैक्ट कैसे करेगी, तो उसके पदार्थ वाला उसको एक शरीर दिया जाता है ताकि वो इंटरैक्ट कर सके, इस पदार्थ जो पदार्थ से बड़ा बना हुआ जगत है ये, तो इससे इंटरैक्ट करने के लिए उसको एक पदार्थ वाला शरीर मिलता है। अन्यथा आत्मा पदार्थ के बिना बोना बॉडी के भी रह सकती है, जैसे कि वो लोग जो कि आत्महत्या करते हैं, जो लोग आत्महत्या करते हैं उनको शरीर नहीं मिलता, क्यों, क्योंकि उन्होंने अपने प्रारब्ध के अनुसार अपने शरीर का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने जल्दी खत्म कर लिया अपनी मर्जी से आत्महत्या करके, तो उस समय आत्मा को बिना शरीर के रहना पड़ता है या फिर उसको भूत के शरीर में रहना पड़ता है, जो कि बड़ी कष्टदायक स्थिति होती है, क्योंकि भूत का शरीर बिना ग्लास नहीं पकड़ सकता, छू नहीं सकता किसी चीज को, प्यास लगी उसे क्या करे, पानी कैसे पिए, उसका हाथ आर पार निकल जाता है। तो आत्मा जो है बिना शरीर के भी रह सकती है, लेकिन शरीर आत्मा के बिना नहीं रह सकता। तो जो जैसे लोग सुसाइड करते हैं तो उनकी आत्मा जो है उनको शरीर नहीं मिल पाते, या भूत का शरीर मिलता है उन्हें कुछ समय के लिए कि थोड़ा समय इसमें रहो, भगवान का दिया शरीर था तुमने जो है साइनाइड खा के क्यों इसको खत्म कर लिया, या पेट में छुरा घोंप के क्यों खत्म कर लिया, पंखे से लटक के क्यों खत्म कर लिया। तो इसलिए जो है ये शरीर हमको मिलता है, पदार्थ वाला शरीर, ताकि हम पदार्थ, ये संसार पदार्थ का बना हुआ है ना, इसके साथ इंटरैक्ट कर सके हम। और यस माता जी, बिल्कुल नहीं दी जाती। हाँ माता जी ने सवाल किया कि अब देखिए स्कूल्स में तो कोई स्पिरिचुअल एजुकेशन दी नहीं जाती, वहां तो यह है बच्चों को मनी मेकिंग मशीन बनाना है भाई, बड़ा होके पैसा कमाए बस और कुछ नहीं। चरित्र, अरे चरित्र क्या भाड़ में, चरित्र किसने देखा है, पैसा कमा, डाकू बन जा, साधु मत बनना, ये एजुकेशन है आजकल की, होता क्या है बच्चे डाकू बन रहे हैं और क्या। तो स्पिरिचुअल एजुकेशन कैसे दें, स्पिरिचुअल एजुकेशन के लिए जैसे हमारे इस्कॉन में गोपाल फन स्कूल है, तो इस प्रकार के जो है जो गोपाल फन स्कूल जैसे जो जो हमारे प्रोग्राम्स हैं, इनमें एनरोल कराएं बच्चों को कि वीकेंड्स में आए हैं, बच्चे सीखेंगे भगवान के बारे में सीखते हैं, और रात को बजाय कि उनको टीवी दिखाने के उनको कृष्णा बुक से भगवान कृष्ण की स्टोरी सुनाएं, तो इस प्रकार से, और उनको मंदिर लेके आए भगवान के बारे में बताएं, बेटा भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, तो ये बचपन से अगर संस्कार देंगे ना तो बच्चे जो है आगे जाके सही निकलेंगे, ये चीज है। तो ये ट्रेनिंग देनी होगी हमें, तो ये पेरेंट्स के ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। अक्सर पेरेंट्स जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा पाते हैं, क्यों, हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, वो अपने ऑफिस में, ये अपने ऑफिस में, बच्चे कहां है पीछे अकेले इंटरनेट पे बैठे संसार के दर्शन कर रहे हैं। अब इंटरनेट पे कोई सेंसर बोर्ड तो है नहीं, है कुछ ना, वो देख रहे हैं बस, तो वो चीजें छोटी उम्र में देख लेते हैं जो कि हम, मतलब हमने बड़े होके जो है कभी इसके बारे में पढ़ा या जाना कभी, पर अब मीडिया का एक्सपोजर है, टेलीविजन में बच्चे क्या देख रहे हैं आजकल, अब तो टीवी सीरियल ही खूब ग्लैमरस हो गए हैं, तो बच्चे वही देख रहे हैं आजकल, वायलेंट सीन्स, सो कॉल्ड रोमांटिक सीन्स, तो वही 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 कर रहे होते हैं स्कूलों में भी। वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, क्या वैलेंटाइन डे, क्या होता है वैलेंटाइन डे। हाँ, तो इसलिए जो है बच्चों को ये संस्कार देने बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों का दिमाग आजकल गंदा हो रहा है। हाँ, उनको सिर्फ इस प्रकार की भौतिक शिक्षा देकर ही, तो पेरेंट्स की बहुत जिम्मेदारी है। भले ही हम फाइनेंशियली जो है घर में कम हो जाए, थोड़े रिस्ट्रिक्टेड हो जाए, लेकिन बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं देना बेकार है घर, वो घर घर नहीं है एक्चुअली वो। और होता क्या, मैंने ऐसे घरों को देखा है, मैं जब काम किया करता था मल्टीनेशनल में, बच्चे जो है घर में खराब हो रहे हैं, पत्नी का अपने ऑफिस में अफेयर है, पति का अपने उसके ऑफिस में अफेयर है। अब ये इसको घरग्रस्ती कहेंगे बताइए। और ये एक इक्के दुखे का केस नहीं, कईयों के साथ होता है, क्योंकि 12-12 घंटे जिसके साथ बिताएंगे उसके साथ ही तो संबंध बनेगा ना। ऑफिस में जो काम करने वाली है या करने वाला है उसके साथ ही रिलेशनशिप है, उसके साथ बोलचाल है, घर पे आए खाना खाया सो गए, वही लेडी का हाल है, वो भी बाहर जाती है काम करती है, जिससे बातचीत करती है, बॉस है, जो है, ये है, वो है, भाई उसी उसी के साथ फिर उसका रिलेशनशिप है, घर आती है खाना बनाती है सो जाती है। बच्चे क्या कर रहे हैं, आते हैं इंटरनेट पे जो है घूमते फिरते हैं, टीवी देखते हैं, ये कर देंगे, उसके बाद फिर थोड़ा होमवर्क करेंगे सो जाएंगे। तो इसको थोड़ी ना घरग्रस्ती कहते हैं, इसको तो नर्क कहते हैं। जैसे एक बार एक बच्चे से पूछा, जैसे एक बार एक व्यक्ति ने बोला कि एक बॉस था, उसने अपने एम्प्लॉय को बोला, क्या काम किया तुमने, गो टू हेल। ठीक है साहब, घर जा रहा हूं मैं। घर क्या है, घर नर्क ही बना हुआ है, क्यों, क्योंकि भगवान तो है नहीं केंद्र। कौन है केंद्र, सैमसंग का प्लाज्मा टीवी लगाया है सेंटर के एकदम घर में, एकदम सेंटर में सब, वहां पर क्या है डाइनिंग हॉल में बैठ के खाना खाते हैं, सैमसंग देखते हैं। तो प्रभु जी आप साधु संघ के लिए नहीं आ पाते, वो सैमसंग देखते हैं ना, कैसे करेंगे साधु संघ, एलजी देखते हैं, फिलिप्स देखते हैं ना, इसलिए आ नहीं पाते, टाइम ही नहीं होता। 3.5 घंटा टीवी भी तो देखना होता है, मनुष्य योनि का पर्पस क्या, टीवी देखना। इसीलिए जो है आज दिल्ली में भले ही करोड़ों लोग रहते हो, लेकिन बैठे कितने आज ऑडिटोरियम में भी खाली सीटें हैं, क्यों, क्योंकि सब बिजी है सैमसंग के साथ, एलजी के साथ, उस पे देख रहे हैं कुछ ना कुछ, मनुष्य योनि सार्थक कर रहे हैं। तो बच्चों को बचाना बहुत जरूरी है, इतना एक्सपोजर है मीडिया का, तो अखबार कितने गंदे हैं, मैंने अमेरिका के अखबार देखे हैं, अखबार अमेरिका का भी इतना गंदा नहीं छपता जितना भाइया के यहां के अखबार छपते हैं। बच्चे क्या देखते हैं, मेन अखबार फेंका, डेली टाइम्स, एचटी सिटी, वो खोलते हैं सीधे, उसमें भी गए स्पोर्ट्स देखा, आज कौन सी फिल्म रिलीज हुई है, फ्राइडे है, ये वो, दैट्स इट। ये रियलिटी है, जब मन गंदे हो रहे हैं फिर हम संसार सोचे संसार को हम सुंदर बनाएंगे, हम यहाँ अच्छे अच्छे मॉल्स खोलेंगे, हम यहाँ पर फ्लाई ओवर बनाएंगे, क्या होगा ये सब बना के, खोखला, अंदर तो सारा मैल है, अंदर के स्क्रू क्या है कुछ पता ही नहीं, ढीले भी नहीं है, गिरे पड़े हैं, गुम है, बाहर सारे स्क्रू टाइट है, इसलिए मिसयूज है, बच्चे खराब हो रहे हैं। आजकल के बच्चे बड़े खराब होते हैं, हमारे टाइम में बड़े अच्छे हुआ करते थे बच्चे, आजकल तो बच्चे आए हाय तौबा राम राम, कौन खराब करते हैं, हम लोग खराब करते हैं, हम भी बीज बोने वाले गाते हैं, अरे देखो आजकल के बच्चे बड़े गंदे हैं, बिल्कुल बात नहीं सुनते, इतने एरोगेंट हैं, मेरा बच्चा मेरे को गाली देता है मेरे को बताओ, और एक्चुअली दिस इज नॉट एग्जैजरेशन, एक्चुअली ऐसा है। तो बच्चों को संभालना बहुत जरूरी है, अब तो हमारे पास ज्यादा फैसिलिटी है दिमाग को पोल्यूट करने की, तो हमें ज्यादा एग्जर्ट करना होगा अपने आप को उनको बचाने के लिए, ये चीज है। यस माते, हाँ ये भी अच्छा सवाल है कि भी अच्छे संस्कार दिए आगे जाए गलत संगत हो गई तो क्या करें, लेकिन माते बताऊं, अगर हम ना अगर अच्छे संस्कार देंगे ना, और बच्चा अगर गलत काम करेगा तो उसके अच्छे संस्कार ना उसको गिल्ट देंगे, गिल्ट मतलब आत्मग्लानी, जो गंदा काम करेगा ना कहेगा यार ठीक नहीं किया मैंने, ये आत्मग्लानी अच्छे संस्कारों से आती है, जब अच्छे संस्कार हुए मिले ही नहीं तो गंदा काम करे जा रहा है, क्या क्या खराबी इसके अंदर, तो गिल्ट जो है ना वो नहीं आता कभी बच्चों को। तो आगे जाके अगर वो गलत संगत पढ़ के गलत काम करेगा भी ना, तो उसके अच्छे संस्कार उसको क्या देंगे, आत्मग्लानी, गिल्ट देंगे उसको, वो गिल्ट जो है ना उसको जलाएगा, यानी ये नहीं है, अच्छा नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये चीज है। तो आगे जाके कोई कहे अरे यार थोड़ा स्मोक करना, क्या चलता है, नहीं यार अच्छा नहीं है ना, मेरे फादर ने कभी नहीं किया, मेरी मदर ने मेरे को बनाना है, नॉट गुड। तो इसलिए संस्कार देने जरूरी है कि गलत काम या तो होता बच जाए, और करेगा भी ना तो उसके अंदर आत्मग्लानि आएगा, जलेगा उसके अंदर वो, तो बच जाएगा कभी ना कभी। यस
प्रभु जी, भूत प्रेत की आत्मा को भगवान का बोध नहीं हो पाता
क्या? नहीं, क्योंकि मनुष्य योनि ही कर्म योनि है, इस योनि में ही जो है हम इस चक्र से निकल सकते हैं, नहीं तो ये एक चक्र है जिससे कोई नहीं निकल सकता, जन्म मृत्यु के चक्र में। सिर्फ इस चक्र में एक ही लूप होल है, एक ही छेद है, उस छेद को कहते हैं मनुष्य योनि, बस जिस उस छेद में आप सब हैं इस समय। अब निकलना या इसी में फंसना वो आपके ऊपर है। हाँ देखो, शरीर एक साधन है, शरीर जो एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमें चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जप करने के लिए माला लेते हैं, माला बहुत जरूरी है, लेकिन माला नहीं भी होगी तो भी हम जप कर सकते हैं, लेकिन माला क्या है, हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमें हेल्प कर रहा है। तो शरीर भी एक साधन है भगवान की सेवा में लगने का। अब शरीर वैसे हमें कष्ट दे रहा है देखो संसार में, लेकिन इसी शरीर को भगवान की सेवा में लगा देंगे तो यही शरीर मुक्ति का कारण भी बन जाएगा। तो इसको प्रभुपाद जी बोला करते थे कांटे से कांटे को निकालना। तो ये शरीर जब भगवान की सेवा में लगता है तो यही मुक्ति का द्वार भी बन जाएगा। तो मनुष्य योनि हमारी मदद करेगी जो कि संसार में मानने वाली है, हर योनि मानने वाली है।
प्रभु जी,
हाँ जी,
ये इतनी
कहां बने, इन आवाज कहां से आ रही है? कहां से?
यहां से, यहां से।
ओके ओके, यहां से।
ये मैं ये जानना चाहता हूँ, इतनी सारी आत्माएं क्यों आई और किस लिए आई, और कोई बहुत खुश तो कोई बहुत दुखी, तो ये क्यों आई और कहां से ये कर्म योग ये सब शुरू हुआ, जन्मों का, ये जानना चाहता हूँ।
एक्चुअली क्या हुआ, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एक ओलंपिक चल रहा था तो सब दौड़ते हुए यहाँ पर आ गई। आई एम सॉरी, जस्ट जोकिंग। एक्चुअली आत्माएं जो है यहाँ पर कैसे आई, यहाँ पर सिर्फ वही आत्माएं आती हैं जो कि भगवान की सेवा नहीं करना चाहती। जब भगवान की नहीं सेवा करना चाहती तो उनको जो है यहाँ पर एक रिफॉर्मेटरी जगह, रिफॉर्मेटरी जगह मतलब कि सुधार ग्रह, तो भौतिक जगत क्या है, एक सुधार ग्रह है, तो यहां पर उनको रखा जाता है। तो यहां पर जो है वो अपनी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करती है यहां पर। तो कर्म बंधन में वो कभी अच्छे कार्य भी करती हैं, कभी बुरे कार्य भी करती हैं, दोनों के फल उनको भुगतने पड़ते हैं।
नहीं, ये बनी कहां से, अलग अलग बनी ना? कि कोई किसी शरीर में है, कोई कैसा है, तो कोई बहुत खुश
है। हमने कर्मों के फल की वजह से बने।
नहीं, ये कहां से आया, कहां से शुरू हुआ, कैसे हुआ, ये नहीं मालूम।
इसकी शुरुआत जो है तब से हुई जब से हमने भगवान की आज्ञा का उल्लंघन किया, जब से हमने भगवान की सेवा करने को नकारा कि भगवान तू नहीं भगवान, मैं ही हूं भगवान। तो तब से जो है हमने जो है गड़बड़ी करनी शुरू की है। तो तब से जो है ये अहंकार मिला, मिथ्या अहंकार मिला, फिर भौतिक शरीर मिला, फिर भौतिक जगत में भौतिक क्रियाएं शुरू हुई। हम ब्रह्मा बने, कभी देवता बने, कभी सुअर बने, कभी क्या बने, कभी क्या बने। तो इस प्रकार से हम लोग जो है ये जो रोलर कोस्टर राइड है ना, इसमें घूम रहे हैं। तो इसमें जो है मनुष्य योनि का एक स्टैंड आता है जिसमें कि कूद के बाहर जा सकते हो, नहीं तो ये रोलर कोस्टर राइड चली रही है 84 लाख योनियों की। और यस मोदी, बुलंद आवाज में,
आपने अभी बोला कि जो परमात्मा है उसने ही ये सृष्टि बनाई और उसने ही आत्मा बनाई, ठीक है। अब आपका परमात्मा आनंद वाला है, ठीक है, आनंद स्वरूप वो लीला में रहता है।
किसका परमात्मा आनंद वाला है,
मतलब जो कृष्ण की आप बात कर रहे थे, उन्हीं ने बनाया
कृष्ण,
तुम्हें आत्मा बनाए, उन्हीं ने संसार बनाया। अब एक अच्छा इंसान एक गलत चीज एक अच्छी चीज कैसे बना सकता है, क्योंकि अभी आपने बोला कि इनर एकोलॉजी, अगर आप अंदर से अच्छे हैं तो आप जो भी काम करेंगे वो अच्छा ही होगा, ठीक है। अब परमात्मा यदि अच्छा है, परमात्मा यदि आनंद स्वरूप है, तो वो कोई दुख का निर्माण कैसे कर सकता है? और यदि वो कोई दुख का निर्माण करता भी है तो वो दुख भी उसका, सुख भी उसका, तो फिर दुख से सुख में क्यों जाए? यदि वो भौतिक शरीर का निर्माण भी कर रहा है, आध्यात्मिक शरीर का निर्माण भी कर रहा है, तो भौतिक से आध्यात्मिक में क्यों जाए? भौतिक में जीते हैं, जब उसका ही है तो कहां जाना और? और नंबर दूसरी बात, आपने बोला अभी, आपने बोला कि अभी ये संसार फ्रस्ट्रेटेड वाला, ये ऐसा नहीं हो सकता कि हम सोच रहे हैं कि फ्रस्ट्रेशन ने, मतलब हम काम करने का तरीका गलत है। ये भी तो हो सकता है कि हम अगर उसी चीज को ठीक से करें तो वही चीज सुख देने लगे। अभी आपने बोला कि ये चीज इच्छा बढ़ाती, वो इच्छा बढ़ाती, इच्छा बढ़ाती, और मतलब मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि यदि कोई चीज को अच्छे से कर लिया है, जी लिया जाए, तो उससे मुक्ति और हो जाती है। जैसे प्यास लगी है और अगर पानी पी लो तो मुक्ति हो जाएगी, आप बाहर हो जाएंगे। यदि आप कोई चीज जैसे कार मतलब घूमने का मन कर रहा है, कहीं कार में जाने का मन कर रहा है, अगर आप कार चला दी और ठीक से चलाते हैं, ठीक से चलाने की बात कर रहा हूँ, अगर ठीक से चलाते हैं तो आप उस चीज की बाहर हो जाएंगे, आपको इच्छा नहीं होगी फिर उस चीज की। तो ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कोई काम को कैसे करते। तो ये कहना एकदम से मतलब मेरे हिसाब से गलत है कि संसार दुख देने वाला है, ये फ्रस्ट्रेशन होता है। तो है ना, तो आप समझ चुके हैं, आप उसका जवाब
जवान खून जवान खून ऐसे होता है यार, मजा मारने की जगह है यार, क्यों ऐसे बोल रहे दुखी, कितना पेसिमिस्टिक लेक्चर देते हैं आप लोग। एक आशावादी लेक्चर हो कि संसार कितना सुहाना है, कितना मतवाला है, ओ ये सुहानी हवाएं, ओ ये ओ वो, वाह क्या लेक्चर, वाह बहुत बढ़िया। कितना पेसिमिस्टिक लेक्चर देते हैं ये है, संसार दुखों से भरा है, संसार ये संसार वो। अक्सर ऐसा, इसमें आपको दोष नहीं है, तो अक्सर मतलब यंग एज में आपको फील की भाई जीरो अपनी आजादी से पूरी तरह से है, तो ऐसा लगता है हमें तो। लेकिन जैसे जैसे आप लाइफ के एक्सपीरियंसेस आप देखेंगे ना, वो हमें यही सिखाते हैं कि वास्तव में दुखाले ही है। जैसे कि मछली जो है, मछली को ना बाहर निकाल दो पानी से बाहर निकाल के कहो खिलाओ भाई इसको, एक पेस्ट्री खिला दो भाई, एक बढ़िया सी एक कैरा पेस्ट्री खिलाओ इसे। मछली कहेगी अरे यार क्या, मैं नहीं मछली, मैं पेस्ट्री से क्या, पेस्ट्री से इसको आपने अच्छी वाली पेस्ट्री नहीं खिलाई, इसको अच्छी वाली पेस्ट्री खिलाइए, माधुरी दीक्षित का डांस दिखाइए, देखिए मछली एकदम मस्त हो जाएगी एकदम, हाँ प्लेट पे रखो दिखाओ इसे, माधुरी दीक्षित का डांस दिखाओ यार इसे, अभी भी दुखी है, अरे यार हमने कोई ढंग का डांस नहीं दिखाया इसको, इसको ऋतिक रोशन का डांस दिखाते हैं इसको, इसको तो खुश है, अब तो खुश है ना, देख 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 देख, अरे यार सब फैसिलिटी दे रहे हैं फिर भी तो खुश नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि मटीरियली जो है वास्तव में उसको सुख मिल नहीं सकता, क्यों? क्योंकि आत्मा क्या है, स्पिरिचुअल, इसलिए उसको खुशी कैसी चाहिए, स्पिरिचुअल, उसके संबंध कैसे होने चाहिए, स्पिरिचुअल, जिससे वो प्रेम करे वो व्यक्ति कैसा होना चाहिए, स्पिरिचुअल। तब कहेंगे भाई एवरीथिंग इज इन सिंक, भाई सब एकदम बैलेंस्ड है। अभी संसार में क्या, आत्मा क्या है, स्पिरिचुअल, संबंध क्या है, मटेरियल, संसार कैसा, मटेरियल, आत्मा कैसी, परमानेंट, आनंद कैसा मिलता है, टेम्परेरी, आत्मा चाहती नित्य ज्ञान, उसको मिलता है यहां नित्य अज्ञान, आत्मा चाहती मुझे ज्ञान की रोशनी मिले, यहां पर क्या चारों अंधकार ही अंधकार है। अगर एक्चुअली अगर आप ये कृत्रिम लाइट्स और सन और मून को हटा दें, अंधकार में जगह है, एकदम ऑपोजिट नेचर। मछली के लिए एक्चुअली सारा ऑपोजिट नेचर है, अब उसको चाहे आप पेस्ट्री खिलाओ, माधुरी दीक्षित का डांस दिखाओ, वो फिर भी कहेगी यार क्या कहां रख दिया मेरे को, पानी में ले जाओ मेरे को, पानी में ले जाओगे खुश रहेगी वो, पानी में खुश। तो इसलिए जीव जो है स्पिरिचुअल, उसका रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, स्पिरिचुअल, उसका प्रेमी कैसा होना चाहिए, स्पिरिचुअल, कौन, कृष्ण, आनंद, स्पिरिचुअल, धाम, स्पिरिचुअल, सब स्पिरिचुअल, इसलिए सब कुछ क्या है, सिंक में। मछली का वहां पर ही खुश रहेगी, मछली सोचे भाई हाँ कोई स्ट्रेस मैनेजमेंट सेमिनार करते हैं यार, बहुत स्ट्रेस हो रहा है, कोई स्ट्रेस मैनेजमेंट सेमिनार हो जाए, थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट सेमिनार हो जाए तो मैं जो है सुखी हो जाऊंगी। यहां सुखी हो ही नहीं सकती आत्मा, कैसा सुख है बताओ यहां पर। तो यहां पर हम चाहे कोई एडजस्टमेंट कर लें, यहां पर हम सुखी नहीं हो सकते। लोग पहले भी टीवी देखते थे, आप बड़ी बड़ी स्क्रीन आ गई, आप लोग क्या मतलब कम टेंशन में, मेंटल इलनेस के केसेस तो बढ़ रहे हैं, अब ज्यादा हॉस्पिटल खुल रहे हैं, क्यों हॉस्पिटल ज्यादा खुल रहे हैं, और तरक्की है भाई, देखिए अब तो इतने हॉस्पिटल जगह हैं, देखिए कितनी तरक्की की बात है, बड़ी तरक्की है भाई, हाँ ज्यादा मरीज हो रहे हैं इससे तो ज्यादा हॉस्पिटल खुल रहे हैं, ये तरक्की है, बाहर से दिखता है अरे देखो अब तो रॉकलैंड भी आ गया है, अब तो मैक्स भी आ गया है, अब तो ये भी आ गया है, वो भी आ गया है, लेकिन हॉस्पिटल क्यों ज्यादा खुल रहे हैं, क्योंकि मरीज लोग ज्यादा हैं अब, ये तरक्की है हमारी। तो बाहर से जो है लगता है हमें कि भाई ये तो बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन अंदर क्या, अब डिवोर्स रेट इतने बढ़ गए हैं ना, अब या ये जो मेट्रोपॉलिटन है 45% डिवोर्स रेट है, खुशियों का रेट, ये खुशियों का ही तो रेट है 45% डिवोर्स रेट, हर 100 में से 45 शादियां तलाक में बदल जाती है, वाह वाह तालियां क्या बात है, तरक्की खुशियां। जब 1984 में पहला डिवोर्स केस फाइल हुआ था ना, तो अखबार में छपा था इंडिया में डिवोर्स केस, माय गॉड, शेम शेम। अब क्या 30,000 ही कहती है यार, एक डिपार्टमेंट खोला यार अलग से, तलाक वाले इतने लोग, इतने तलाक वाले आ रहे हैं, हद हो गई है, अलग डिपार्टमेंट खोल दिया उन्होंने। तो ये खुशियों का स्टैटिस्टिक्स है, हमको लगेगा कि हाँ भाई खुशी का स्टैटिस्टिक्स है भाई, अभी तो हम जवान हैं, अभी तो मैं जवान हूँ, मेरे बाल भी काले हैं और मैं हरफर मौला नौजवान, जो जीता वही सिकंदर। लेकिन यहां कौन सिकंदर है? सिकंदर किसको बोलते हैं? हंसता रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा। सारे रोते हुए आते हैं, रोते हुए जाते हैं, कौन मुकद्दर का सिकंदर? भगवान के भक्त हैं, भले ही रोते हुए आए संसार में लेकिन हंसते हुए जाते हैं, तो मुकद्दर का सिकंदर कौन हुआ? रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो कृष्ण भक्त कहलाएगा। सिंपल है। तो भगवान का भक्त ही एक्चुअली खुश रह सकता है, चाहे वो इस जगत में हो चाहे आध्यात्मिक जगत में। ठीक है, और किसी को सवाल है? ओ यस माता जी। हाँ, भूत प्रेत होते हैं? मैं बैठा हूं ना, क्यों?
स्वामी जी नमस्कार।
नमस्कार, हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा स्वामी जी, मेरा प्रश्न है कि वास्तव में भूत प्रेत होते हैं, और अगर होते हैं तो उनसे हम अपना बचाव कैसे कर सकते हैं?
आप बस हरि नाम लीजिए, ना तो आप कोई भूत बनोगे ना कोई भूतों से संपर्क में आओगे, बस सिंपल है, चैन हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। ठीक है, आखिरी सवाल लेंगे क्योंकि टाइम हो गया। ओके माता जी का, और एक आपका ले लेंगे। ठीक है,
हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण माता।
कहते हैं कलयुग का अंत होने वाला है, कलगी अवतार होने वाला है, क्या सत्य है ये?
अरे पता नहीं कब होंगे, मैं खुद वेट कर रहा हूँ।
आप तो परमात्मा के बहुत नजदीक हैं, आपको तो ज्ञात होगा।
आई डोंट नो, आई एम जस्ट अ सर्वेंट, मैं दास हूँ सिर्फ भगवान का। लेकिन वास्तव में अभी कलयुग का अंत नहीं है, अभी कलयुग की शुरुआत हुई है, बल्कि अभी तो द्वापर से कलयुग में जो है ट्रांजिशन चल रहा है। अभी तो कुल मिला के 4,27,000 साल का कलयुग है, जिसमें सिर्फ 5,000 साल बीते हैं, यानी 4,27,000 साल बाकी है अभी कलयुग को। इसके आखिर में आएंगे 4,27,000 साल बाद कल की अवतार। तो अभी बहुत टाइम है कल की अवतार। ऑफ कोर्स इस समय इंडिया में 11 कल की अवतार घूम रहे हैं, जो कि गाउन पहनते हैं, लंबे लंबे बाल रखे हैं, उन्होंने प्रवचन देते हैं। कल की अवतार का क्या लिखा है? नो प्रवचन, तलवार लेंगे मुक्ति, दुष्टों का संहार करते, प्रवचन नहीं देते कल की अवतार। ये सारे प्रवचन देने वाले कल की अवतार घूम रहे हैं। इस समय 6 चैतन्य महाप्रभु, आपकी नॉलेज बता रहा हूं, इस समय इंडिया में 6 चैतन्य महाप्रभु घूम रहे हैं और 11 कल की अवतार। कुछ साल बाद अपडेटेड डेटा भी आपको देने की कोशिश करूंगा।
नहीं प्रभु जी, कलयुग का अंत से क्या मतलब है? क्या मतलब संसार, भौतिक संसार का अंत?
नहीं, भौतिक संसार का अंत नहीं है। कलयुग के बाद फिर सतयुग एस्टैब्लिश करते हैं, कल की अवतार, फिर से सतयुग शुरू होता है।
परंतु दुख तो बहुत बढ़ चुका है संसार।
दुख तो अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या, और मजा आएगा। और एक सवाल पीछे था, है ना, किसका था? हाँ यस
प्रभु जी, सतयुग त्रेता द्वापर आज चल रहा है कलयुग।
हाँ,
तो उसके अनुसार मेरे समझ से मैं जानना चाहता हूं कि पहले के अपेक्षाकृत आज लोगों को या आत्मा को परमात्मा में विलीन होने का मौका ज्यादा मिल रहा है क्या?
मतलब कलयुग में ज्यादा मौका मिल रहा है?
मैं वही जानना चाह रहा हूं सर प्रभु जी, क्योंकि अगर वर्ल्ड की जनसंख्या को देखा जाए तो लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, यानी मानव की संख्या लगातार बढ़ रही है। और अगर पूरे योनियों की बात की जाए, तमाम चीजों की बात की जाए, तो आत्मा तो हर चीजों में भटकती है, जैसे किसी भी प्रकार के जीव हो। तो मानव की संख्या अगर लगातार बढ़ रही है, इसका मतलब कि परमात्मा से
मानव की संख्या कुछ नहीं बढ़ रही चीज है। मानव की संख्या कुछ नहीं बढ़ रही, ये तो ये जो जनसंख्या वाले हैं ये दिखाते रहते हैं जनसंख्या बढ़ रही है, पर जनसंख्या कुछ नहीं बढ़ रही, जनसंख्या जितनी होनी चाहिए उतनी है। लेकिन यह है कि जब पृथ्वी पे ना जब अधर्म बढ़ता है तो पृथ्वी जो अपने आप को श्रिंक कर लेती है। ये पृथ्वी जो है जीवित व्यक्ति है, ऐसे नहीं कि वो डेड मैटर है। तो पृथ्वी जीवित व्यक्ति है, भगवान की पत्नी है। जब अधर्म बढ़ता है ना तो क्या होता है, ये सरफेस एरिया कम हो जाता है इसका। जब किसी चीज का सरफेस एरिया कम हो जाता है ना तो सब चीजें पास पास नजर आती हैं, तो लगता है जनसंख्या बढ़ गई, पर ऐसी जनसंख्या नहीं बढ़ी। रामायण में जो बताया गया, जिस तरह जितने मंकीज थे, जितने बंदर थे, वो तो उसके लिए तो मतलब अभी संख्या कम बढ़ेगी हमारे लिए। तो पहले संख्या ज्यादा थी, अभी कम है। ये सिर्फ जनसंख्या शोध वाले बताते रहते हैं इस तरह से कुछ ना कुछ कहानियां, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। और मनुष्योनी सिर्फ पांव पे दो पांव पे चलने से थोड़ी ना मनुष्योनी बन जाती है। हाँ, आजकल लोग पशु जैसे जीवन बिता रहे हैं, सब पशु योनि में, और क्या। अगर कोई पीटर इंग्लैंड की शर्ट पहनता है, ली कूपर की जींस पहनता है, उसे मनुष्य योनि थोड़ी बन जाती है।
नहीं, योनि तो प्रभु जी है, लेकिन मानव की संख्या जैसे हो, स्त्री पुरुष जो भी हो, तो उनके दो पैरों वालों की संख्या तो हमारी बढ़ रही है ना, तो उसके अनुसार तो हम ये कह सकते हैं ना कि लोगों को सुधार का मौका ज्यादा मिल रहा
है। मैं बता रहा हूँ, कोई संख्या नहीं बढ़ रही। ये जो जितने भी शोध बताने वाले हैं, ये सारे फेक हैं एकदम। मासूम, आपके जैसे मासूम लोगों को उल्लू बनाने का तरीका है, और कुछ नहीं है। तो आपको मनुष्य योनि मिली है, इसका पूरा पूरा फायदा उठाइए। मैं यहीं पे समाप्त करूंगा क्योंकि टाइम काफी हो गया है। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा। जगद गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय।